नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। इसराइल और ईरान के बीच जंग के आसार कम होने से शेयर बाजार के सेंटिमेंट मजबूत हुए हैं। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स में मजबूती आई है। सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की तेजी है तो निफ्टी भी 22,250 के पार ट्रेड कर रहा है। आज के कारोबार में तकरीबन हर सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी पर बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल, FMCG, IT, फार्मा, रियलिटी और मेटल इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल सेंसेक्स में 363 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और ये 73,451 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 120 अंक बढ़कर 20,267 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। आज के टॉप गेनर्स में अल्ट्रा सिमको, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, LT, कोटक बैंक, ICICI बैंक, टाटा स्टील शामिल हैं, जबकि टॉप लूजर्स में रिलायंस, HDFC बैंक शामिल हैं। NSE के प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 19 अप्रैल को शुद्ध रूप से 129.39 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 52.50 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। NSE ने बायोकॉइन को 22 अप्रैल के लिए F&O बैन लिस्ट में जोड़ा है, जबकि बलरामपुर चीनी मिल्स, बंधन बैंक, एक्साइड इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, पीरामल एंटरप्राइजेस सेल और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस को इस लिस्ट में बरकरार रखा है, जबकि GNFC, हिंदुस्तान कॉपर और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। F&O सेगमेंट के तहत बैंक सिक्योरिटीज में वो कंपनियां शामिल होती हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट का 95% पार कर जाते हैं। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार मिक्स्ड बंद हुए थे। शुक्रवार को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में 2011 अंकों की बढ़त रही और ये 37,986.40 के लेवल पर बंद हुआ। नैसडैक कॉम्पोजिट में 319 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 15,282 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 इंडेक्स करीब 44 अंक टूटकर 4,967.23 के लेवल पर बंद हुआ है। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.654 पर है, जबकि डॉलर इंडेक्स 105.98 पर बना हुआ है। आज के कारोबार में प्रमुख एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है। एशिया की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में 0.64% बढ़त है तो निकेई में 225 में 0.71% को तेजी दिख रही है। स्ट्रेट टाइम्स में 1.41% तेजी है तो हैंगसेंग करीब 2.14% मजबूत हुआ है। ताइवान वेटेड में 0.16% गिरावट है तो कोस्पी में 0.85% तेजी है और शंघाई कॉम्पोजिट में 0.15% गिरावट है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अपने विक्रेताओं के माध्यम से अगले 3 साल में भारत में 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे सकती है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने ये बात कही है। फिलहाल एप्पल के विक्रेता और आपूर्तिकर्ता भारत में 1.5 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। एप्पल के लिए 2 संयंत्र चलाने वाली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने PTI भाषा से कहा, एप्पल भारत में नियुक्तियों में तेजी ला रहा है। एक पुराने अनुमान के अनुसार ये अपने विक्रेताओं और कल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से अगले 3 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहा है। इस संबंध में एप्पल से संपर्क किया गया तो कंपनी ने कोई बयान नहीं दिया। एप्पल की अगले 4-5 साल में भारत में उत्पादन को 5 गुना से बढ़ाकर $40 अरब यानी के 3.32 लाख करोड़ करने की योजना है। बाजार शोध कंपनी काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार एप्पल ने पहली बार 2023 में सबसे अधिक राजस्व के साथ भारतीय बाजार में सबसे आगे रही है, जबकि सैमसंग मात्रा के मामले में शीर्ष पर रही। दो पहिया वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने स्थानीय वितरक CG मोटर्स के साथ साझेदारी करते हुए नेपाल में असेंबली संयंत्र शुरू किया है। कंपनी ने रविवार को बयान में कहा कि इस संयंत्र की क्षमता प्रतिवर्ष 75,000 इकाइयों की होगी। ये नए निवेश लाएगी और क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगी। बयान के अनुसार नवल परासी में CG इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित नई असेंबली सुविधा में 4 उत्पादों एक्सपल्स 204V, सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, मोटरसाइकिल और जूम 110 स्कूटर को स्थानीय रूप से असेंबल किया जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कारोबारी अधिकारी वैश्विक कारोबार इकाई के संजय भान ने कहा, यह हमारे CG मोटर्स और नेपाल के लिए एक रोमांच है। अत्याधुनिक असेंबली इकाई ये सुनिश्चित करेगी कि हमारे विश्वस्तरीय उत्पाद अब नेपाल में बनेंगे और देश भर के ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने नेपाल में 2014 में प्रवेश किया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।